आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
जैसे जैसे दुनिया की आबादी स्मार्टफोन, गाड़ियों के पुर्जों और यहाँ तक के हथियारों जैसी तकनीकों के लिए भी महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मेटल्स पर लगातार अधिक निर्भर होती जा रही है, वैसे वैसे ये संसाधन राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनते जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि विदेश के 1.2 अरब डॉलर के रणनीतिक भंडार में कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण खनिजों को प्राथमिकता देगी। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और अब आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, क्रिटिकल मिनरल्स आधुनिक जगत में लगातार अधिक अहम होते जा रहे हैं। ये खनिज उन तकनीकों की बुनियाद हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया भर में अरबों लोग करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स या फिर कंप्यूटर्स। 2026 में ये खनिज न केवल आर्थिक रूप से अहम है बल्कि फेडरल संसाधन मंत्री मैडलिन किंग का कहना है कि ये अपने आप में एक हथियार बन चुके हैं। उनके अनुसार इन संसाधनों का रणनीतिक भंडार बनाए रखना सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है।
Gallium and rare earth elements are very important within the AUKUS context as well. So making sure those products are available for the builds our three nations of AUKUS are doing in the submarines is also going to be important.
Gallium, antimony और रेयर अर्थ्स को ऑस्ट्रेलिया के 1.2 अरब डॉलर के क्रिटिकल मिनरल रिजर्व के लिए प्राथमिक संसाधनों की सूची में शामिल किया गया है। एंटीमनी का इस्तेमाल कई रक्षा संसाधनों जैसे गोलियों को मजबूत बनाने, मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों में और नाइट विजन गॉगल्स के एक अहम घटक के रूप में किया जाता है। वहीं गैलियम भी सैन्य उपकरणों के लिए, खासकर उन्नत रडार प्रणालियों के एक प्रमुख हिस्से के तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। ये रणनीतिक भंडार फेडरल सरकार को ये अधिकार भी देता है कि वे ऑस्ट्रेलियाई खदानों से खनिज खरीदे और उन्हें अन्य देशों को बेच सके। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के साथ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े सहयोग को मजबूत करता है। ये आपूर्ति श्रृंखला और ये नई घोषणा अमेरिका को खनिजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में ये आकलन व्यक्त किया था।
Year from now we'll have so much critical mineral and rare earths that you won't know what to do with them. They'll be worth about $2.
हालांकि अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 12 जनवरी को एयरफोर्स वन से उन्होंने ये जानकारी दी कि इन खनिजों का इस्तेमाल किन क्षेत्रों में किया जाएगा।
I'm going to be making a trip to Detroit to talk about our unbelievable amount of factories that are opening up all over the country, many of which are car factories and car plants. We have manufacturing plants opening up at levels that nobody's ever seen before.
अल्बनीजी सरकार इस क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कुल मिलाकर लगभग 28 अरब डॉलर की राशि विभिन्न उपायों के तहत निवेश करने जा रही है। हालांकि शैडो रिसोर्सेज मंत्री सूजन मैकडोनल्ड ने स्काई न्यूज से बातचीत में चिंता जताई है कि घरेलू नीतियां ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं को बाधित कर सकती है।
We've been warning for years that labor needs to be ensuring the supply of these critical minerals, and that means ensuring mining. That means not introducing more legislation like the EPBC. It means reducing the costs of processing. And, you know, if we just talk about gallium for a second, I mean, that is a byproduct of bauxite mining, and yet bauxite processing is on its knees.
ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग अब तक चाइना में की गई है, जिसने पिछले साल इन संसाधनों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लगभग 90% हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा था। ये निर्भरता केवल ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है। अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाएं भी इसी चुनौती का सामना कर रही हैं, जिसके चलते G7 देशों के वित्त मंत्री इस मुद्दे पर चर्चा के लिए वॉशिंगटन DC में एकत्रित हुए। इस बैठक में फेडरल कोषाध्यक्ष जिम चामर्स भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका और चीन के एक अधिकार को चुनौती देने की उसकी क्षमता को सामने रखा। संसाधन मंत्री के अनुसार ये पहल वैश्विक मंच पर ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती भूमिका का संकेत देती है।
And what this says is that whilst Australia is not a member of the G7 because of our extraordinary resources sector and our natural advantages in resources and critical minerals, we are welcome at these forums as a leader on rare earths and critical minerals globally.
वहीं जापान ने रेयर अर्थ्स की खोज के लिए एक जहाज रवाना किया है, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए वे चाइना पर अपनी निर्भरता को और कम कर सके। SBS न्यूज से कैमल बियांकी की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वैशाली जैन ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।